بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات حضر محترم انجمن حیدری کے زیر اہتمام امام بارگاہ حیدری میں شرح مجالس کی چوتھی مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں، جس میں ہمارا عنوان قرآن مجید کی مشہور معروف آیہ ولایت کے دل میں میدان وادی رقم سے ظہور تک ہے. آیت یہ تو قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے رہنما ہے، نور ہے اور ہدایت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس پر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. لہذا ایک ہدایت یہ ہے کہ انسان خود قرآن پڑھے، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ دوسروں کو پڑھنے کے مواقع فراہم کرے. مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں پر خطاب کر رہے ہیں، آپ مومنین یہاں سن رہے ہیں، لیکن کوئی اگر واسطہ بن جاتا ہے کہ اس مجلس ادا کو، اس پیغام حسینی کو، کربلا کے آفاقی پیغام کو اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچائے، تو یہ ثواب جاریہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ تمام افراد کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام حسینی کو پہنچا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پیغام حسینی کو پہنچا رہے ہیں، وہ ثواب جاریہ کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص تعداد اس گفتگو کو سن رہی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ مثلا یہاں کا میڈیا سیل جو ہے وہ اس کو اپنی طرف سے بھیج رہا ہے، تو یہ خود بخود کیا ہے، یہ ثواب جاریہ ہے. ثواب جاریہ ہے یعنی کئی لوگ اس کو سن رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال زندہ نہ رہوں، لیکن جب یہ گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ چلی جاتی ہے، تو پھر یہ گفتگو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے. ممکن ہے کہ کوئی مجھے نہ بھی جانتا ہو آئندہ 10 سال کے بعد، جس نے میرا نام نہ بھی سنا ہو، لیکن وہ انٹرنیٹ پر میری مجلس سن سکتا ہے. تو یہ ثواب جاریہ ہے. جس طرح حسین ابن علی نے کربلا بنائی ہے، تو جب تک کربلا ہے یہ ثواب جاریہ موجود ہے. پیغام خدا مسلسل اس کربلا کی مجلس کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. مجلس ادا پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچانا ہے. مجلس ادا، جلوس ادا پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچانا ہے. مسلمانوں کو بیدار کرنا ہے، کہ شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حضور سے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. پس اس بنا پر مجلس اعضاء ایک پیغام ہے. آیت کہہ رہی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر ولایت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے, بس اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے, اور وہ صاحبان ایمان ان کی ولایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت روح میں زکاۃ دیتے ہیں. ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن کی مختلف آیات ہیں جس کے مختلف نام ہیں. یہ آیت جس میں تین ولایتوں کا تذکرہ ہے اس کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے. آیہ ولایت یعنی اس میں ولایت کا تذکرہ موجود ہے, یعنی جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اسے اللہ کی ولایت نظر آئے گی. اللہ کی ولایت کے تحت محمد مصطفیٰ کی ولایت نظر آئے گی اور پھر علی مرتضیٰ کی ولایت نظر آئے گی. ہو نہیں سکتا. اب مفسرین نے لکھا ہے, شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو تیسری ہستی جس کی ولایت کی بات کی گئی ہے یہ کون ہے, درجہ کہ اللہ نے علی کا نام نہیں لکھا لیکن علی کا ذکر ایسے کیا ہے کہ مٹانا بھی چاہو تو نہیں مٹا سکتا, بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ولایت اللہ کی ہے. اب ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میدان غدیر سے, ہم نے کہا تشیع کی ابتدا وہ غدیر سے ہو رہی ہے. تشیع کا امتیاز, تشیع کا چہرہ, تشیع کا شناختی کارڈ وہ کیا ہے؟ میدان غدیر خون ہے. اگر میدان غدیر خون کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ بچے گا ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, پھر کہوں گا یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت نکال دو دین سے تو دین کچھ نہیں رہ جاتا. میں ضرور بھیجے محمد و آل محمد. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر تم نے وہ حکم نہیں پہنچایا فما بلغت رسالته, وہ یہ تم نے کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں. بس علی کی ولایت کا اعلان در حقیقت رسول کے بعد ایک زندہ امام کا تعارف کرانا ہے, ایک ایسا امام جو زندہ ہے, جو حی ہے, جو حاضر ہے. اور صرف زندہ نہیں ہے, صرف خلیفہ نہیں ہے, صرف وسیع نہیں ہے, بلکہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے, معصوم ہے, حجت الہی ہے. یہ حجت الہی ہے کہ اگر زمین سے کہیں ٹھہر جا تو ٹھہر جاتی ہے. نجران کے سپاہیوں نے جب پنجدن کو آ کے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ قل تعالوا ابناءنا وابناءكم, تم اپنے بیٹے لے کر آؤ, ہم نے بیٹے لے کر آتے, رسول کا اپنا سگا بیٹا موجود ہے لیکن سگا بیٹا لے کے نہیں جا رہے, فاطمہ زہرا کے بیٹے لے کے جا رہے ہیں. نساء انا و نساءکم, اپنی خواتین کو, ہم اپنی خواتین کو, ازواج رسول موجود ہیں, ازواج مطہرات کو لے کے نہیں گئے, ایک فاطمہ زہرا کو لے کے گئے. وہ انفسنا و انفسکم, اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں. وہ اپنے مرد لے کر آئے, رسول اپنے ساتھ علی مرتضیٰ کو لے کے چلے. تو نجران کے سپاہی نے کیا کہا؟ نجران سپاہی نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا, ان سے دعا کا مقابلہ نہ کرنا, اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو کہیں ہٹ جا تو وہ ہٹ جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اہل بیت نے پہاڑ کو رکنے کا حکم دیا یا نہیں دیا, لیکن آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جو اہل سنت میں لکھا ہے کہ خلیفہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اہل بیت کی صداقت پر مہر تصدیق ہو جاتی ہے. हजरत की सिपाही ने क्या कहा, मुसलमान नहीं थे, क्या कहा, इनसे मुबाहला न करना, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये पहाड़ से अगर कहे मुझे रखिएगा तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। क्यों पहाड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मुझे रखिएगा, इसलिए कि इंसान की ताकत पहाड़ को हिला नहीं सकती। कहा कि ये उस विलायत तकवीनी के हामिल हैं कि अगर पहाड़ को हुक्म दे तो पहाड़ हट जाए। तो कुरान यही तो कह रहा है, रसूल यही तो कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो गिराकत चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान के लिए कुरान कह रहे, लव अंजलना हादल कुरान अला जबल लरअयतु खौशअन मुतसद्दअन मिन खशयतिल्लाह। देखो अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ खौफे इलाही से रेंदा रेंदा हो जाता। और ये अहले बैत दूर खुदा के हामिल है कि अगर पहाड़ को कहे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे।
पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, कुरान पहाड़ पर नाजिल हो फिर पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, टूट जाए, दर्रों में तकसीम हो जाए, पत्थर बन जाए। लेकिन अगर अहलाबाद कह दे हट जा तो हट जाएगा। तो सिर्फ यही नहीं, अगर फातिमा ज़हरा कह दे हसनैन तुम्हारे कपड़े हयात जन्नत से आ रहे हैं तो फरिश्ता आ जाता है मिलकर दुरूद पढ़े अज़मत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह। तो कैसे पता चले कि नजरान के सिपाहियों ने कहा कि अगर ये पहाड़ पर कहे अपनी जगह से हट जा तो हट जाए, तो मुझे पहाड़ तो हटता हुआ नजर नहीं आया लेकिन जमीन हरकत छोड़ती हुई नजर आ गई। खलीफा के दौर में, शायद खलीफा अव्वल थे, खलीफा तो हुकुम से पहला, खलीफा राशिद के दौर में एक दफा मदीने में बड़ा सख्त दलदला आया। समझो रखिएगा, मेरे साथ साथ है या नहीं है, मैं मैदान कदीर खून से जहूर तक ले जाना चाहता हूँ। तशय्यु हमारा इम्तियाज है, तशय्यु हमारा शनाख्ती कार्ड है। अगर तशय्यु को पहचानना है तो विलायत को पहचानो, गदीर को पहचानो। ये गदीर की विलायत क्या है, जमीन आसमान पर अल्लाह के हुक्म से अली की हुक्मरानी का नाम है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जमीन और आसमान पर अली के हुक्मरानी का नाम है। दिलो देते मोहम्मद वाला खलीफा के दौर में दलदला आया और लोग जो है वो खलीफा के पास हासिल किए। खलीफा तो खलीफा को जानशीन रसूल समझ रहे हैं ना, बहरहाल एक अकीदा था मुसलमानों का। उन्होंने खलीफा के सामने दौड़ना शुरू किया, उधर से देखा खलीफा खुद परेशानी के आलम में अपने घर से निकल गए। हाँ, कौम खलीफा के पास और खलीफा कौम के पास, भाई क्यों भागे आ रहे हो, दलदला आ गया। तो कहा कि क्या करें, कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, दलदले को मैं नहीं रोक सकता। तो कहा क्या करें, तो खलीफा ने कहा आओ एक ऐसे दर पे चलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग थके हुए हैं या नहीं थके हुए, लेकिन कम से कम साथ तो दे ना भाई। ये जो आप हाथ उठाते हैं ना, ये क्या है पता है आपको, ये नारे तकबीर आपने लगाया अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे हजरी हाथ, ये हाथ उठाने क्या है कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस्ताद नाम लेता था, रोल नंबर वन आदिब सर, रोल नंबर टू आदिब सर, रोल नंबर थ्री जी प्रेजेंट सर, रोल नंबर फोर जी मौजूद सर। उधर हकीकत मजलिस अदा में अपने इमाम को बता रहे हो कि मौला मैं भी हाजिर हूँ। दोनों हाथों को उठा के मैं नारा लगाऊ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अपने इमाम वक्त बता रहे हैं मौला मैं हाजिर हूँ, मैं जिंदगी में खो नहीं गया,
मैं तेरे जद हुसैन की मजलिस में आया हूँ ताकि तेरे ज़ुहूर के लिए दुआ करूँ। तो दुरूद दीजिए मोहम्मद वाले पर।
तो अर्ज कर रहा था कि आप एक ऐसे दर पे चलते हैं कि जहां सारी मुश्किलात का हल मिल जाता है। अब खलीफा आगे आगे और मुसलमान पीछे पीछे मौला अली के दरवाजे पर सब परेशान नजर आ रहा है। इधर से देखा अबू तुराब छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बहुत बहुत सुकून के आलम में चला आ रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूछो मौला ने बताओ आखिर क्या माजरा है। कहा कि दलदला आ रहा है अबू तुराब, दलदला आ रहा है। मौला एक दफा आगे बढ़े और एक जगह अपना हाथ रखे का या जमीन खामोश हो जा, जमीन खामोश हो जा। कुल के मदहरे आला की जबान इसमत से जब उस कुटी या अर्ध के जुमले निकले, जो कीजिएगा कुल भयकुन के मदहरे आला से। कुल भयकुन किसका कौल है? अल्लाह का है। जो कह देता है वो हो जाता है। अब अल्लाह की सिफात का जो मदहर होगा वो जो कह देता है हो जाता है,
जो कह देता है।
या उस कुटी उस लोग यानी खामोश हो जा, ठहर जा। बस कुन फयकून के मदहर आला ने जमीन पर हाथ रखकर अली ने हुक्म दिया, बल्कि यूं कहूं अबू तुराब ने हुक्म दिया, जमीन लरसती हुई ऐसे खामोश हो गई जैसे रोता हुआ बच्चा मां की आगोश में आ जाता।
पता चला नजरान के सिपाहियों ने, नजरान के ईसाइयों ने जो कहा था, ये पहाड़ को कहे अपनी जगह से हट जाओ तो हट जाए, खुदा ने ये भी करके दिखा दिया लरसती हुई जमीन को अगर कोई खामोश कर सकता है वह अबू तुराब।
बल्कि दुरूद भेजे मोहम्मद वाले पर। तो पहचानना है खदीर को, पहचानना है अली कौन है,
इसके लिए सारा आलम दीवाना हुआ। ईसाई है इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए किताब लिखी है अल इमाम अली अदालत इंसानी की अजीम तरीन आवाज
ईसाई है। भाई तुम हजरत ईसा के बारे में किताब लिखो? नहीं, अली का आशिक मैं ईसाई हूँ, लेकिन अली का आशिक हूँ, इसलिए मैंने अली जैसा इस दुनिया में नहीं देखा।
सब अली का आशिक पहचानना है, मैं जिससे अदा
अली की मारफत करानी है कि अली को पहचान लो, अली की विलायत को कबूल करो। अली की विलायत को कबूल करने से क्या मुराद है? जिस रसूल के बाद अली की विलायत कबूल की सही मानना में कामयाब,
सही मान। मिसाल के तौर पर अक्सर आपने देखा कि नौजवान ये हरकतें बहुत करते हैं जी, एक व्हील पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं और फिर उसको अपलोड कर करके जी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भेजे जा रहा है, और फिर जी साई कमेंट कर दो, साई पास कर दो, साई लाइक कर दो, साई फॉरवर्ड कर दो, भीख भी मांग रहे होते हैं। एक भीख मांगने वाले वो होते हैं जो रोटर मांग रहे होते हैं, और ये जदीद भीख मांगने वाले हैं जो लाइक की भीख मांग रहे हैं। अरे भाई भीख भीख होती है, लाइक की भीख मांगो या रोडों पर कैसे भीख मांगो। लेकिन दुरूद भेजे मोहम्मद वाले पर।
अली वाला किसी के सामने भीख नहीं मांगता, उसको जरूरत नहीं होती कि अपनी वीडियो अपलोड करके कि लाइक करो। अली वाला वो होता है जब अपना किरदार पेश करते हैं, दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है।
आपने देखा होगा ना एक मोबाइल होता है टच स्क्रीन, हर कोई बच्चा जो है टच स्क्रीन मजलिस में बैठा होगा, आधी मजलिस तो उसकी मोबाइल पे हो जाएगी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है? यदि आपने छुआ और विंडो खुल गई, छुआ तस्वीर आ गई, छुआ कैमरा खुल गया, टच का मतलब है छूना। छूने को कहना चाहिए हिंदी में
हाथ लगायो खुल जा, सुन सब हमारी बात होती है। पहले जमाने में दरवाजा कैसे खुल जाता है जी, हाथ लगायो यही टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या है? अब नौजवान समझे टच स्क्रीन होगी मेरे पास तो मैं कामयाब इंसान हूँ। नहीं, नौजवानों, टच स्क्रीन वाला मोबाइल टचने से कामयाब नहीं होना, बल्कि अली की मोहब्बत से टच में रहना कामयाब हो जाओ।
अली की मोहब्बत से टच में रहना है,
अली को छोड़ना नहीं है।
कुछ लोग होते हैं ना,
वो अली को थोड़ी देर के लिए पकड़ते हैं।
अदादारी में मौला अली जी, इम्तिहान में पास होने मौला अली, कारोबार नहीं चल रहा मौला अली, मोटरसाइकिल ब्रेक लग गया या अली मदद मौला अली, लेकिन उसके बाद अली को कोई लिफ्ट ही नहीं।
शादी में हम मौला अली को लिफ्ट कराते मानदत के साथ,
मजलिस मातम में तो चलो जी मौला अली का गम है, इमाम हुसैन का गम है, लेकिन अपनी खुशियों में जहाँ बेपर्दगी होती है, जब गाने होते हैं, जब माजरत के साथ शराब नोशी भी होती है, होती है नहीं होती, होती है। क्या वहां पर मौला अली को टच नहीं
करना? विलायत यानी अली का दामन थामे रहो।
तो अगर तुम अली का दामन कुछ वक्त के लिए थामो, कुछ वक्त के लिए न थामो, तो तुम तो खबारिज जैसे हो गए। एक वक्त अली की बात मान रहे, एक वक्त अली तुम इमाम हो, एक वक्त कह रहे अली तुम काफिर हो गए। तो फिर हम में और खबारिज में फर्क क्या रह जाएगा? अली के दुश्मन में हमें फर्क क्या रह जाएगा? अली के शिया वो होता है
गर्दन पे तलवार की है, अली का साथ छोड़ता नहीं है।
यही नौजवान ईरान का वो मशहूर मकरूफ नौजवान शहीद मुहसिन खवाजा जी, जो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के हरम को बचाने के लिए गया,
उसकी गर्दन पर तलवार लग गई। उसने कहा कि मेरी गर्दन उड़ा दो, लेकिन मैं अली और औलाद अली से पीछे हटने वाला नहीं।
यही थी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में आपका हीरो एतजाज हसन रहमतुल्लाह अलैह, खुदा की सलामती पर हो।
कौन था इसको देखा दहशतगर्द आ रहा है? अली वाला वो होता है जो अपनी जान पे खेल कर हजारों की जानों को बचाता है।
अली का अली वाला फिर ये नहीं देखते कि मेरी जिंदगी खतरे में होता था, मेरा मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं किस रूप में मुहम्मद अली। तो हमें मौला मुहर्रम तक अली के साथ नहीं देना,
हमें जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अली के साथ,
मरते दम तक अली के साथ, ताकि जब ज़बान पर कलमा शहादत आए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह,
यानी मैं ज़बान से कहूँ अली मेरा इमाम है, तो अली भी कहेंगे हाँ तूने सारी जिंदगी मुझे इमाम कहा है, तो आखिरी वक्त में जब तेरी जान जा रही तो मैं तुझे ले लूँगा। वो कितने खूबसूरत लम्हा होगा, सारी जिंदगी आरजू करते रहे मौला अली की ज़ियारत हो जाए। एक मोमिन के लिए इससे बढ़ कर भी कोई और मुकाम होगा कि मर्दम अली के चेहरे पर नूर की ज़ियारत
है। मैं दुरूद जे मोहम्मद वाला तो विलायत का मतलब ये नहीं कि एक वक्त साथ दो एक वक्त साथ नहीं दो, नहीं विलायत नहीं चुनाव। अभी नौजवान बच्चे क्या करते हैं जी, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, कभी लेटे हुए, कभी एक पैर कभी दूसरा पैर जी, कभी खड़े हो गए कभी बैठ गए, और फिर क्या होता खुदा ना खास एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, ये चलती गाड़ी से दरवाज़ा खोल कर करतब दिखाने लगते हैं। हमें नहीं, विलायत की गाड़ी में वो हवाई जहाज वाली मिसाल अपनी मनमानी नहीं करनी,
दिल पर अली की हुक्मरानी करनी है।
तब जाके शिया कहलाओगे। शिया का मतलब क्या है? शिया का मतलब पीछे पीछे चलने वाला। तशीह जनाजा का नाम सुना ना, बल मोमिन अदा के दबाल में उनकी तशीह जनाजा साई हैदरी इमाम बारगाह में सुबह 8 बजे होगी। अब मसलन जनाजा सीधे हाथ में जा रहा है, आपके हम तो उल्टे हाथ में जाएंगे। ये तशीह जनाजा कहलाएगी? तशीह जनाजा किसे कहते हैं?
जनाजे के पीछे पीछे जाना। शिया किसे कहते हैं? जो अली के पीछे चलता है,
अली के पीछे चलता है, अली का ताबेदार होता है, अली का खिदमत गुजार होता है। सिर्फ जबान से काफी नहीं नारे विलायत, बल्कि अमल दल साबित करना है कि अली
आपकी विलायत की हुक्मरानी मेरी आंखों पर होगी, मेरी आंखें वही देखेंगी जो आप चाहते हैं। पहली मेरे कानों पर शैतान की नहीं, आपकी विलायत की हुक्मरानी होगी जो आप चाहेंगे मैं वो सुनूंगा। पहली मेरी जबान पर आपकी विलायत की हुक्मरानी होगी जो आप चाहेंगे मैं वो सुनूंगा। पहली मेरे कदमों पर शैतान की नहीं, आपकी विलायत होगी जो आप चाहेंगे मैं वही उठाऊंगा। न कि ये कह के नारे हैदरी या अली, अभी फेसबुक निकाल कर गाने भी सुन रहा तो तुझ में और यजीद में फर्क क्या रह गया भाई? यजीद की गाने सुनता था तो भी गाने सुन रहा है, यजीद की बीवी भी बेपर्दा थी, घर वाले भी बेपर्दा थे, तेरी औरत भी बेपर्दा है, तो फिर यजीद और हमें फर्क क्या रह गया है? इसलिए कि लानत जिस्मों पर नहीं होती, इसलिए ये नहीं कहते यजीद मुर्दाबाद, क्या कहते हैं? यजीदियत मुर्दाबाद। यजीद का जिस्म था मिट्टी में मिल गया, यजीद के जिस्म था मिट्टी में। अभी जो लानत है ये किस पर है? यजीदी फिक्र पर है, यजीदी रूह पर है, यजीदी सिफात पर है। अब ये सिफत जिस जिस्म होगी लानत उस तक पहुंच जाएगा। विलायत को कबूल, विलायत को समझे। इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीन आमनु वल्लदीन युकीमून अस्सलात व युतून अस्सकात व हुम राकिऊन। मुसलमान तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, वो साहिब आले ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अली की विलायत को कबूल करे। मुमिन पर फर्ज है कि वो अली की विलायत को कबूल करे। इसलिए कि अगर अली की विलायत कबूल न की तो फिर कोई अमल कबूल नहीं। तो ज़ुहूर तक जाना है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए कि हमारा इमाम कौन है? हमारा इमाम हमारे इमाम है, लेकिन हमारे ज़माने का इमाम कौन है? इमाम ज़माना अज़ल अल्लाह ताला फ़र्ज़ है। हम किस किस सिपाही हैं? इमाम ज़माना। बस एक वाक्य सुना था आपकी बहन तमाम विलायत यानी साथ देना। करबला में एक नौजवान था जिसका नाम तो किसी को नहीं मालूम था, उसकी जबान पर एक जुमला ज़ियारत वारसा था। ज़ियारत वारसा कौन सी है? जो शब जुमा हम पढ़ते हैं। वैसे तो कोई भी ज़ियारत पढ़ी जा सकती है, जो मशहूर कौन सी है? ज़ियारत वारसा, इसको ज़ियारत मकसूद भी कहा जाता है। इमाम हुसैन की कई ज़ियारतें हैं, 7 या 8 ज़ियारतें हैं एक जगह, और फिर हर इस्लामी मुनासबत से इमाम की अलग अलग ज़ियारतें हैं। ये क्यों है? जैसे ईद आती है ना तो मोबाइल कंपनी वाले क्या करते हैं, पैकेज देते हैं आपको। सही है, पैकेज ले लें, दिन का पैकेज ये, रात का पैकेज ये, ईद का पैकेज ये, जी पैकेज देते हैं ना। तो अल्लाह आलम ने भी हमारे लिए ज़ियारत का एक पैकेज रखा है। उस पैकेज को समझ में आए। अब आपको पैकेज मिल गया आपके मोबाइल में, अब आपको पता ही इसमें SMS कितने हैं, जी इसमें काले कितनी फ्री हो सकती हैं, सिम नेटवर्क पर अदर नेटवर्क पर कितनी कॉलें पड़ जाएंगी, कितने कितने MB है, व्हाट्सअप चल सकता है, फेसबुक चल सकता है, होता ही नहीं होता। अब आपको पता ही नहीं, क्या है ज़ाया कर देंगे आप। इमाम हुसैन की ज़ियारतें खुदाई पैकेज हैं, तो खुदा से जुड़ जाओ तो खुदा की रहमत हासिल करो। अब ये नौजवान क्या था, ज़ियारत वारसा का एक जुमला पढ़ा करते थे,
आपके साथ होता है आपके साथ,
दिल से कहता था, तड़प के कहता था, नौजवान था, मोहब्बत करता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, करबला वालों से, अली वालों से, दिल से कहता था। अब उसकी दवा पर हर वक्त क्या ये जुमला करता, काश में करबला में होता तो मैं आपके साथ दर्जे शहादत के साथ होता। ये रिकॉर्ड करना चाहे नौजवान करें, और ये नौजवान ये वाक्य पहुँचाएँ मोहब्बत किसे कहते हैं, अली की विलायत हुसैन की विलायत कबूल करना क्या हुआ?
एक दिन जब इसका नाम ही अल्लाह इतना पड़ गया, क्या लेतन ही जरा भाई ये सामान उधर पहुँचा दो
आदम साहब,
क्या लेतन ही हमारा काम ही बोरी उधर पहुँचा दो आदम साहब। एक दिन सुबह आया, चुप, ताले लगे हुए। लोगों ने कहा भाई तुम तो बाजार में बोलते ही नहीं थे, हमें चाहिए कहते या लेतनी कौन तुम्हारा तो मौला काश आपके साथ रहा। अब इसका नाम ही लेतनी पड़ गया था। आज आया खामोश, अब आज क्यों खामोश हो, तुम्हारा तो मिर्जे दबा ही लेतनी था। कहा क्या, कल रात मैंने ख्वाब देखा जिसकी वजह से मुझे मेरे ईमान की हकीकत पता चल गई। चुप, साकेत, करंट लग गया हो जैसे, जैसे आप जा रहे हो ना सामने से सांप आ जाए इंसान परेशान हो जाता है, करंट लग गया बिल्कुल चुप हो गया। भाई क्यों चुप हो गए? रात को ख्वाब में देखा। भाई क्या ख्वाब देखा? कहा कि मैं सोते हुए जब सो रहा था तो रोते हुए ये पढ़ता है मौला काश का बला मोहम्मद आपके साथ शहीद होता, मौला काश काश काश, ख्वाब मैंने देखा मैदान करबला है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज की तैयारी कर रहे हैं। मैं जा रहा था, इमाम ने मुझे आवाज दे के बुलाया, इधर आओ नौजवान। तुम कहते थे ना उठते बैठते आते जाते एक काश मौला करबला में होता, अपनी जान निसार करता, मौला काश मौका मिल जाता। ठीक है, अब हम सब कुछ सोचना चाहिए। अब मौला ने कहा कि ऐसा करो मैं नमाज पढ़ूं तो मेरे सामने खड़े हो जाओ। तो मौला ये तो अंधे को दो आंखें चाहिए होती है, ये तो खुशी का मौका। मौला सारी जिंदगी तड़पता रहा, आज आपने कहा सीना ऐसे करके खड़ा हो गया। अब उधर से तीर चला, अब ये तीर आता देख रहा है, अब उसको थोड़ा सा स्लो मोशन में देखे, आप स्लो मोशन समझते हैं ना, स्लो मोशन में देखिए तीर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरी बच्चों की मोहब्बत आई, मैं मर जाऊंगी, मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हट गया तीर, इमाम को लगा, पीछे मौके देखा क्या किया मैंने, तीर इमाम को लग गया। अपने आप को बुरा भला कर, तूने क्या कर दिया, तीर इमाम को लगे, तू तो कह रहा था कि मैं ईमान की हिफाजत करूंगा, दर्जे शक पाए तो मैं, आज वक्त आया अपने ईमान की सदाकत और सच्चाई को साबित करने का, तू हट गया। अगर अब जो तीर आएगा मैं खड़ा होगा, दूसरा तीर चला, अब इसको स्लो मोशन में देखिए तीर चल रहा है, इससे तो मेरे कारोबार का क्या होगा। हट गया तीर ईमान को लगा। अब मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत कच्ची मोहब्बत थी, नाकस मोहब्बत थी। सच्ची मोहब्बत होती तो तीर खा लेता या नहीं खाता बताओ। अपने दिल पे मैं भी हाथ रख के सोचूं, आप भी हाथ रख के सोचो, अगर ये मौका मुझे और आपको मिले तो हम तीर खाने वालों में से होंगे या भागने वालों में से होंगे, पता चल जाएगा। अगर मैं सुबह फजर की अजान के वक्त उठ जाता हूँ तो ये अली अकबर की आवाज आ रही है और मुझे हुसैन जितना नमाज पढ़नी है तब मैं हुसैन वाला हूँ। लेकिन अगर अली अकबर की अजान बुलाती रहे और मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो हुसैन की अदादारी करनी है, इसका मतलब लगे ईमान नाफिस है। अब इसने कहा कि तीर मौला को लग गया, अब कहा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो तीर आएगा, फिर तीर चला, माँ बाप की मोहब्बत आ गई, दुनिया की मोहब्बत आ गई, तीर ईमान को लगा, तीन चार तीर ईमान को लग गए। किसी अस्ना में इस्तेमाल में बस सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम ने सलाम फेरा, देखा इमाम को तीर लगा हुआ है, इमाम खड़े हुए मेरे पास आए, क्योंकि वक्त तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम अपने मुंह से कहो तुम अगर करबला में होते तो तीर खाने वालों से नहीं फरार कर जाने वालों से नहीं। ये मेरे और आपके लिए एक पैगाम है, चेक करें वाकई में क्या मैं करबला में होता, मतलब मैं अपना शोहरत के लिए नहीं नहीं जनाब, मैं तो खाने वाले को सुनता, ये वक्त बताएगा
अभी एक मरतबा बाकी है, एक फर्जन जो हुसैन बाकी है, उसको भी तैयारी करवा कर तुम करबला में नहीं थे,
अफसोस न करो।
फर्जन जो हुसैन के लिए फर्जन है तैयारी,
इसलिए कहा कि जरूर चल जाऊंगा। बस
मैदान से
हमने गली कूचों में अपना इमाम नहीं बनाया, हमने मीटिंगों में और जलसों में अपना इमाम नहीं बनाया, हमने अल्लाह के हुक्म से कुरान की आयत के मुताबिक रहमतन लिल आलमीन व खातमुन नबियीन के ज़बान रिसालत से उसके हाथ में अली का हाथ देखकर कुरान की आयत के मुताबिक मन कुंतु मौला हो बहादा अली मौला का जुमला सुनकर अली के हाथ पर बैत की है।
हमने वोट डाल के अली को इमाम नहीं बनाया, हमारा इमाम वोटिंग का मोहताज नहीं होता, इलेक्शन का मोहताज नहीं होता, वो सिलेक्शन उसका अल्लाह करता है। हम तशय्यो ने कहां से सफर शुरू किया, तुमने बैयना आयत नंबर 7 या जो अल्लज़ीन आमनू ईमान आने वालों वामिल सालिहात ईमान आने वालों और अमल सालिह करने वालों में गिदरो भेजे मुहम्मद वाले मुहम्मद का तो आयत में आपके सामने पढ़ूंगा कि दुरूद भेजे मुहम्मद वाले मुहम्मद का सूरह बैयना आयत नंबर 7 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह किए ये जो लोग हैं जो इस रूह जमीन पर सबसे बेहतरीन है। और जो रखे ईमान लाए अमल सालेह किया यही वो लोग हैं जो रूह जमीन पर सबसे बेहतरीन है। सरकार से पूछो वो कैरू बनिया कौन है, उधर से अली आ रहे थे, अली को बिठाया, अली के कंधे पे हाथ रखा, आजा कैरू बनिया यही तो मेरे पास सबसे अफजल है। अब अस्हाब कहते थे जब हमने कुरान की आयत सुनी, तफसीर रसूल की ज़बानी सुनी, जब अली को देखते थे तो कहते थे जा कैरू बनिया, अली नहीं आ रहा है, कायनात में सबसे अफजल इंसान आ रहा है।
शीयत की हिफाजत इस अकीदे की हिफाजत, छोटे मोटे नारे मुश्तहिदी के खिलाफ जहर गलती जबाने, दुश्मन कभी भी आपसे अलग नहीं छेड़ेगा। आप देखेंगे दुश्मन ने एक जमाने में बड़े हमले किए, बड़े धमाके किए, बड़ी कत्लवारत की, आदिवारी ले लो पत्थराव किया, न जाने अभी भी होता है, बम ब्लास्ट किए, बम धमाके हुए, ले लो नहीं ले हम क्या क्या करें। इनके दरमियान को ऐसे अपराध छोड़ो ताकि इनका अकीदा बन जाए। दुश्मन कभी भी दुश्मन बन के नहीं आएगा, दोस्त बन के आएगा। बाजार में जो जाली दवा मिलती है, जाली दवा, जाली पानी, जाली कोल्ड ड्रिंक मशहूर है ना, जाली दवाएं, जाली दवाएं कौन सी होती हैं, शीशी जो असली है उसका साइज भी वही होगा, नकली बोतल है उसका साइज भी वही होगा, जो उसमें स्टिकर लगा है, लेबल लगा है असली दवा पर वो भी वही होगा, और जाली दवा नकली दवा उसके भी लेबल वही होगा। जो एड्रेस असली दवा पे लिखा है वही एड्रेस जाली दवा पे लिखा होगा, लेकिन फर्क कैसे पता चलेगा, फर्क पता चलेगा इस्तेमाल करके। अगर बीमारी सही हो जाए तो ये असली दवा है, बीमारी बिगड़ जाए ये जाली दवा है। बस आप ही नुकता दे रहा हूँ, असली दवा लेबल से तो हुआ नहीं खाना। अब बोला ना हमें क्या पता अब असली है कि जाली है, पी ली मर गए तो क्या होगा, खुदाना पास वैसे भी दवा है, कुछ लोगों ने जाली दवाएं दी ऊपर गए मरना अगर मर गए क्या कहा ऐसे अपराध से दवा लो जानने वाले से भी जिसकी सच्चाई पर यकीन हो
है साथ साथ है या नहीं है मेरे को जानने वाला है भाई है भतीजा है साई है मुर्शिद है कोई ना कोई तो जानने वाला होगा फिर पता है कि ये झूठ नहीं बोलता ये जाली दवाने में से ये अपना है मोमिन है मुसलमान है कि अल्लाह रसूल का कहना मानने वाला है इससे बेझड़क ले लो यानी क्या मतलब जाली दवा को असली दवा से फर्क करने का फार्मूला क्या है
एतमाद इंसान से लो बस अजीज जाने गरम में एक जुमला कहना चाहता हूँ जब जाली दवा को असली दवा से फर्क करने के लिए अपनी सेहत के लिए एक इत्मीनान वाले आदमी से दवा लेते हैं तो तीनों अदादारी को ये छोटे मोटे नारा लगाने वालों से क्यों ले लेते हो ये भी तो नारे विलायत लगा रहे आलियुन वलियुल्लाह हम भी तो लगा रहे हैं तो पता कैसे चले ये मुनाफिक का नारा आलियुन वलियुल्लाह है ये असली का नारा है पता चले कि जो इमाम के नाइब के खिलाफ जबान खोले वो जाली नारे विलायत लगा रहा है और जो नाइब इमाम के हाथों को मजबूत कर रहा है वो असली नारे विलायत लगा रहा है कैसे पता चले कि ये लबैक या हुसैन जाली है या असली है जो तुझे नमाज से रोके हुसैन की महबूब तरीन चीज पे ये जाली नारा लगा रहा है जो नमाज की तलब बुला रहा है ये असली लबैक या हुसैन लगा रहा है एतमाद इंसान से लो टीचर हो बहुत अच्छा उस्ताद हो बहुत अच्छा केमिस्ट हो बहुत अच्छा होना चाहिए फिर अदादारी और दीन लेने के लिए इन बंदर नुमा जाकिरों से क्यों लिया जा रहा है जो है दीन मुस्तनद से लो अदादारी मुस्तनद से लो जो तुम्हें सही एड्रेस बताए जाली दवा पे वही नाम लिखा होता है जो असली दवा पे लिखा होता है उसका रंग भी वही होता है जो असली दवा का होता है उसका साइज भी वही होता है जो असली दवा का पहचान कैसे करें आगे एतमाद वाले से लो जब एतमाद वाले से असली दवा लेते हैं तो फिर सही हुसैन का एड्रेस भी सही वाले से ले
नबी के दुरूद भेजे मोहम्मद वाले
जो तुम्हें माफ की तरफ बुलाए ये हुसैन की हकीकी अदादारी है जो तुम्हें इत्तेहाद का दर्द दे तो शियों को मुत्तहिद होना चाहिए हकीकी अदादारी तुम्हें जो जाने का दर्द दे लिहाजा हमें इस तशय्यो को इस अदादारी को बचाकर इमाम तक ले जाना है ताकि वो फर्जंद के पास आए बस अच्छा ऐसा ऐसा दिन आ रहे हैं फिर आपके तबरकात के अय्याम आ जाएंगे आज उनका तस्करा है जो इब्राहिम विलायत के इब्राहिम थे जिन्होंने विलायत को नहीं छोड़ा वो कौन थे आसार होता है और आज उन दो नौजवानों का तस्करा है जो जैनब के लाभ थे तमसिन थे अपने इमाम वक्त की नुसरत का हक वो सिर्फ नारे विलायत लगाने वाले नहीं थे अली की विलायत के आयल थे अली का कलमा पढ़ते थे हसन का कलमा पढ़ते थे और अपने इमाम जमाने की विलायत पर साबित थे तनहा नहीं छोड़ा अपने एक बच्चे की उम्र क्या होती खेलने की कूदने की नहीं होती है ना
क्रिकेट खेले बैट बॉल खेले और आजकल तो माशाल्लाह से हमने एक और बला उसके हाथ में दे दी है वो क्या है मोबाइल
बच्चा बहन जाएगा
यही कहते हैं ना बच्चा रोया चलो जी मोबाइल दे दो बच्चा बहल जाएगा
बच्चा बहलेगा नहीं बहक जाएगा
बच्चे बहक क्यों रहे इसीलिए बहक रहे तो वो चीजें जो उनको बाद में मसलन उनकी सामने आनी चाहिए वो बचपन में 8 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में देख रहे छोटे छोटे बच्चों को दे एक से एक काम करते हुए नजर आ रहा है
इन्हीं सलाहियतों को आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करें, ताकि हमारे बच्चे इमाम के सिपाही बने। इमाम को जाहिल शिया नहीं चाहिए, इमाम को लाओबाली शिया नहीं चाहिए, इमाम को सुस्त शिया नहीं चाहिए, काहिल शिया की जरूरत नहीं इमाम वक्त को। इमाम को पढ़े लिखे जिम्मेदार, वफादार, ताबेदार, मददगार शिया की जरूरत। ये दोनों जवान कौन है? जो अपने इमाम वक्त मुसलत के लिए
जनाब सैनब ने देखा कि कौन मोहम्मद
शहीद नहीं हुए, बोला कि पूछा उन्होंने मोहम्मद को अभी तक जिंदा हो, सर झुका दिया शहजादे ने।
माफी करानी
क्या करूँ, इमाम जान, इमाम हुसैन, इमाम जवान, लड़ने की इजाज़त नहीं थी। जनाब हुसैन सब उठाने वाले इमाम की भोजन में आई, खेती में आई, कहा कि मौलाना हुसैन है, भाई हुसैन मुझे बताइए कल अगर मेरी माँ फातिमा सुल्तान ने पूछ लिया जैनब तू मेरे हुसैन के लिए क्या कुर्बानी
दी, ये बताइए मैं क्या जवाब था। इमाम ने सर झुका दिया,
समझ गए जैनब क्या करना चाहिए।
अब्बास
इधर आ गया, जी सर दोनों शहजादों एक जरी इंसान के लिए, मर्द इंसान के लिए, जलावर दरी इंसान के लिए तब मरता है जब उसके सामने उसके छूटे लग जाते हैं। अब्बास की जाहिरी शहादत उस वक्त हुई थी जब पानी लेके आ रहे थे, लेकिन जितने बड़े हाशिम के जवान जाते थे अब्बास शहीद हो जाते थे।
इमाम की इजाजत नहीं थी, अब्बास एक दफा शहीद नहीं हुए, अब्बास कई मरतबा शहीद हुए।
मेरे पालियों के बच्चे, मेरे तरबियत आपको बच्चे करने जा रहे हैं, तैयार थे जरा बजाय जिसे पहुंचे इमाम के पास पर। इमाम ने कहा जाओ माँ से इजाजत लो, माँ की खिदमत में आए हैं, माँ के ग्राम वाले की इजाजत चाहिए, कहा कि बेटा देखो जहाँ तो रहे हो लेकिन मामू को कभी पीठ न दिखाना,
इमाम ने वक्त को पीठ न दिखाना। और लिया वादा लिया, जबान दी दोनों बच्चों ने और कहा देखो बेटा एक दूसरे से जुदा नहीं होना, जुदा होगे ताकत तकसीम हो जाएगी, जमा रहना। ये आज जो हमारी अंजुमनें मिल के चलती हैं कि जनाब जैनब की वसीयत छोड़ के मातम करो, छोड़ के चलो, शिया जितना जुड़ के रहेगा मुत्तहिद
रहेगा। देखो बेटा अगर जमात की तरफ रुख के दूध नहीं बनते
इंसान की जंग हुई अली के इन नवाबों में, हैदरी जौहर जो है अल अमान अल हदीस की सदाएं बुलंद हुई, कुश्ते कुश्ते हम कत्ल लाशों में लाश है, दोनों शहजादे सत्यूर हो गए। याद ने कहा, हमारे साथ ने कहा कि इनकी ताकत को तोड़ा जाए, हमला किया गया बड़ा हमला, इन दोनों शहजादों को जुदा किया गया। दोनों शहजादों को जुदा करना था, और तो मोहम्मद मोहम्मद और नजर नहीं आ रहा, और पुकार रहा है मोहम्मद को, मोहम्मद मैं जिंदा हूँ तो हमला कर, मोहम्मद कह रहा है और मैं जिंदा हूँ तो हमला कर। दोनों शहजादे लड़ रहे हैं, जब ताकत तकसीम हो गई ना, अब दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। अजीजा ने कहा क्या हुआ, बस एक दफा बच्चे मोहम्मद की आवाज आई, मामू जान मेरा आखिरी सलाम ले लो, और की आवाज आई मामू जान मेरा सलाम ले लो। हुसैन एक दफा लेके चले अब्बास को, देखा दोनों शहजादे एड़िया रगड़ रहे हैं, एक दफा लाशें लेकर आए जैनब की खिदमत में, जैनब ने क्रिया नहीं किया, एक दफा लाशों के दरमियान बिनत अली बैठ गई, एक तरफ औन का लाशा, एक तरफ मोहम्मद का लाशा, एक लाशे पर औन के लाशे पर जैनब ने हाथ रखा, दूसरे लाशे पर हाथ रखा, कहा कि शाबाश मेरे शेरो तुमने माँ को सुलखुरु कर दिया। जैनब ने कहीं क्रिया नहीं किया, एक मौके पर आकर
بنتِ علی نے گریہ کیا ہے. جب قافلہ واپس مدینہ پہنچا, زینب اپنے گھر پہنچی, اس حجرے میں پہنچی جہاں آن اور محمد کے مصلے رکھے ہوئے تھے یا نمازیں رکھی ہوئی تھی. اے عزادارو, اپنے بچوں کو نماز سکھانا تاکہ آن اور محمد کی پیروی میں یہ امام کے ناصر بن سکے. دونوں شہزادوں کی جان نمازوں کو اٹھایا, کہا کہ بچوں میں اس لیے نہیں روئی کہ کسی کا دل چھوٹا ہو جائے گا, کبھی آن کی جان نماز اٹھاتی ہاں میرے لال, کبھی محمد کی جان نماز اٹھاتی ہاں میرے لال, مگر میرے بھائی حسین کا غم تھا اس لیے زینب نے گریہ تک کیا.